आस्था के जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने की आवाजें सभी के कानों में सरगम की तरह गूंजने लगी थीं। वहीं नानी माँ की गोद में अंश अपने माता पिता को एक दूसरे के करीब देखकर जोर से किलकारी मारकर हंस पड़ा था। सभी बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन वहां मौजूद दो आंखें अभी भी ऐसी थीं जिनमें कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी। होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट बनाए अरमान और आस्था को एक साथ देखकर उसका दिल पूरी तरह गुस्से और नफरत से भर गया था। फिलहाल जल्दी से आस्था अरमान से बोली, अरमान जी, सब लोग हमें देख रहे हैं और पता नहीं सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आपको क्या जरूरत है इस तरह सबके सामने हमें उठाने की? लेकिन अरमान ने तुरंत ही आस्था को नीचे उतारने के बजाय उल्टा उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अब तो ये दृश्य देखकर सब खुशी से झूम उठे। तभी आहान और ध्रुव ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, ये क्या यार, हमारे भाई तो बड़े रोमांटिक निकले यार, और एक हम लोग हैं कि उनके सामने अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगा सकते। यार मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी रौनक को इसी तरह गोद में उठाकर घुमा दूं। तभी जल्दी से ध्रुव बोला, मैं कब मना कर रहा हूं, फटाफट उठा ले अपनी बीवी को, इनफैक्ट मैं तो खुद वंशिका के पास जा रहा हूं। ये कहते हुए ध्रुव और आहान अपनी अपनी वाइफ की ओर जाने लगे थे, क्योंकि इस वक्त सारी लड़कियां नानी माँ के आसपास खड़ी थीं। मौका देखकर ध्रुव और आहान अपनी अपनी पार्टनर के पास जाकर खड़े हो गए। आहान तो रौनक को कोहनी मारते हुए बोला, देखा अरमान भाई कितने रोमांटिक हो रहे हैं, एक काम करते, क्या मैं भी तुम्हें ऐसे ही उठा लूं सबसे सामने, तुम्हें कोई एहसास तो नहीं? आहान की बात सुनकर रौनक हैरानी से उसकी ओर देखकर बोली, हेलो लल्लू लाल, मुझे उठाने की सोचना भी मत, अगर तुम मुझे उठाओगे और फिर गिरा दिया तो? नहीं नहीं, ये तुमसे नहीं हो सकता, अरमान भाई की बात अलग है, जरा देखो उनको, उनकी लोहे जैसी बॉडी, उनका फौलादी शरीर, वो कितने स्मार्ट और ताकतवर हैं, प्लीज तुम मुझे उठाने की सोचना भी मत। रौनक की बात सुनकर आहान उसे नाराजगी से घूर कर बोला, ओ हवा हवाई, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम भी आहान द ग्रेट सिंघानिया है और मैं भी काफी ताकतवर हूं और अरमान भाई से कुछ कम नहीं हूं, रुको अभी बताता हूं तुम्हें। ये बोलकर आहान ने तुरंत रौनक को उठा लिया और जोर जोर से चिल्ला पड़ा, जोर लगाकर हाय शाह, जोर लगाकर हाय शाह। अब रौनक शर्म से पानी पानी हो गई और लगातार आहान के सीने पर नोचने लगी और बोली, छोड़ो यार क्या कर रहे हो, सब क्या सोचेंगे, प्लीज आहान अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, प्लीज छोड़ो, मैं मान गई तुम भी ताकतवर हो। लेकिन आहान तपाक से बोला, अब आई ना लाइन पर हवा हवाई, अभी तो बस उठाया है, अगर मैं भी अरमान भाई की तरह तुम्हें गोल गोल घुमाने लग गया ना तो तुम यहीं चक्कर खाकर बेहोश हो जाओगी। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। वहीं रौनक शर्म से लाल होकर बोली, आहान नीचे उतारो मुझे अभी के अभी। लेकिन आहान जानबूझकर उसे और ऊपर उठाते हुए बोला, नहीं उतारूंगा, पहले सबके सामने बोलो कि तुम्हारा पति भी किसी से कम नहीं है। अब रौनक ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली, हाँ बाबा मान लिया तुम बहुत ताकतवर हो, अब तो नीचे उतार दो। तभी ध्रुव पीछे से हंसते हुए बोला, वाह भाई आज तो बड़े बड़े पति अपनी अपनी बीवियों से तारीफें सुनने में लगे हुए हैं। ये सुनते ही वंशिका ने ध्रुव को घूरा, तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो इतनी आसानी से पिघल जाएं। ध्रुव तुरंत मुस्कुराकर उसके करीब आया और धीमे स्वर में बोला, अच्छा जी लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। ध्रुव, वंशिका शर्म से उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ अरमान अब भी आस्था को अपनी बाहों में थामे खड़ा था। आस्था बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी लेकिन अरमान उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नानी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बस भी करो तुम लोग, इतना प्यार देखकर तो हमारी नज़र ही लग जाएगी। नानी माँ की बात सुनकर सभी हंस पड़े। लेकिन तभी अचानक वहां खड़ी वही शख्सियत जिसकी आंखों में अब तक जलन साफ दिखाई दे रही थी अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच कर रह गई। उसने गुस्से से आस्था की तरफ देखा और मन ही मन बोला, बहुत खुश हो लो तुम लोग लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मन ही मन कोई बहुत बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर चुका हो। उधर इन सब बातों से अनजान आस्था खुशी से मुस्कुरा रही थी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर इतनी सुकून भरी मुस्कान आई थी। तभी छोटा अंश अचानक अपनी नन्ही नन्ही बाहें फैलाकर अरमान की तरफ झुक गया। अरमान तुरंत मुस्कुराया और आस्था को नीचे उतारकर अंश को अपनी गोद में उठा लिया। अंश तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ा और अपने छोटे छोटे हाथों से अरमान का चेहरा पकड़ने लगा। ये दृश्य देखकर आस्था की आंखें हल्की नम हो गई। उसके दिल में अचानक एक अलग सी शांति उतर आई थी। तभी अरमान ने अंश के माथे को चूमते हुए धीरे से कहा, मेरी पूरी दुनिया बस तुम दोनों में ही है। अरमान की ये बात सुनते ही आस्था की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई। आस्था ने अपनी बड़ी आंखों से अरमान की तरफ देखा और उसे अरमान की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार दिखाई दिया। तभी दादाजी आ गए और ढेर सारे रुपए अरमान, आस्था और उनके ऊपर से उतारते हुए उन्होंने तुरंत ही घर के नौकरों में बांट दिए। फिर हल्की सी नम आंखों से सबको देखते हुए बोले, मेरे बच्चों बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना, ऐसा लग रहा है कि एक भयानक तूफान के बाद एकदम से सब कुछ थम सा गया हो और अब हर जगह बस मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए। किसी भी तरह की कोई भी बड़ी परेशानी उनकी जिंदगी में कभी ना आए। दादाजी की बातें सुनकर सभी मुस्कुरा दिए थे। तभी आगे बढ़कर अभिमान और वसुंधरा ने जल्दी ही दादाजी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद वसुंधरा ने दादाजी और बाकी सबके साथ साथ नानी माँ से भी आशीर्वाद लिया। बारी बारी से सभी से गले मिलकर वो भावुक हो गईं। उसी वक्त अबीर सिंह राठौर और प्रियंका भी सबसे आशीर्वाद लेने लगे थे। फिलहाल प्रियंका ने आस्था को गले लगाकर कहा था, समझ में नहीं आता आस्था, किस मुंह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। सचमुच तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। तभी अबीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा मकसद भी पूरा हो चुका है और अब हमारे दुश्मनों को भी उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिल चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी मेरे जाने का वक्त आ चुका है। अबीर के जाने की बात सुनकर दादाजी आगे आए और अबीर के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा हम तुम्हें जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, लेकिन बेटा बस कुछ दिन हमारे साथ गुजारो, उसके बाद आप चले जाना। और हाँ, बदले में तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा, इस घर के एक बेटे की तरह तुम प्रियंका बेटी के साथ समय समय पर हमसे मिलने के लिए आते रहोगे। आखिर अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो और परिवार के लोग यूं रिश्ता जोड़कर दूर नहीं जाते। ये सुनकर अबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आदरपूर्वक अपना सिर झुका लिया और सहमति में हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है दादाजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके परिवार का हिस्सा बनकर रहूं तो मैं जरूर रहूंगा, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक, क्योंकि अब मुझे ये शहर छोड़कर जाना होगा और अपने काम की जिम्मेदारियां भी संभालनी होंगी। ये सुनकर दादाजी मुस्कुरा दिए। वहीं सुमित, आकाश और ध्रुव आगे बढ़े और अबीर को गले लगा लिया। आहान मुस्कुराते हुए बोला, आपका स्वागत है अबीर भाई, आखिरकार आप भी हमारी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। सभी का प्यार और अपनापन पाकर अबीर कहीं ना कहीं बेहद खुश नजर आ रहा था। फिलहाल अबीर ने शांत भाव से अरमान की ओर देखा। अरमान ने केवल हल्की सी मुस्कान दी। उसका ये छोटा सा इशारा ही काफी था ये जताने के लिए कि उसने अबीर को कुछ दिनों तक इस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी।
तभी देर न करते हुए प्रियंका अपनी माँ, नानी माँ, आस्था और सभी लोगों से अच्छे से मिली और अबीर के साथ जाकर खड़ी हो गई। और अचानक अबीर की आंखें एक पल के लिए अंश के साथ खेल रही आस्था पर गई। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ आकर ठहर सा गया था। तभी सीमा जी और मनोज जी भी आगे आए और बोले, हम लोग अब चलते हैं, वैसे भी अब काफी रात हो चुकी है। आस्था ने उनसे कहा, मामा मामी आप अभी रुक सकते हैं, अभी आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सुबह भी तो जा सकते हैं। लेकिन सीमा जी ने बड़े प्यार से आस्था के गालों को छूकर कहा, बेटी काफी दिन से यहाँ रह रहे हैं और बेटी के घर में हम हमेशा तो नहीं रह सकते, फिर हमारा अपना घर भी तो पड़ा हुआ है और जाकर उसे भी संभालना है, ज्यादा दूर थोड़ी ना है, पास में ही तो है, हम चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। तभी नानी माँ थोड़ा हिचकिचाते हुए आस्था के पास आईं और बोली, गोरी बिटिया हम भी अब सीमा और मनोज के साथ ही जा रहे हैं, अब तुम्हें अपना खूब अच्छे से ख्याल रखना होगा और बाकी सब लोगों का भी ध्यान रखना होगा। अब नानी माँ के जाने की बात सुनकर ध्रुव और आहन के कान खड़े हो गए। देखते ही देखते दोनों नानी माँ के चारों तरफ आकर खड़े हो गए और सारी लड़कियां भी नानी माँ से लिपट कर खड़ी हो गईं। वंशिका ने हैरानी से कहा, आप कहाँ जाने की बात कर रही हैं और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप हमें छोड़कर चली जाएंगी? नानी माँ हल्का सा हंसते हुए बोली, अब तुम जवान लोगों में हम बूढ़ों का क्या काम यहाँ, वैसे भी ये तुम्हारी मौज मस्ती के दिन है, अभी अभी इतना बड़ा तूफान तुम्हारी जिंदगी से गुजरा है, अब जाकर थोड़ी सी शांति आई है, थोड़ा अपनी अपनी बीवियों को अपने बच्चों को समय दो, थोड़ा घूमो फिरो और उसके बाद अपने काम धंधे पर वापसी करो, आखिरकार यही तो जिंदगी है, बिना काम की जिंदगी किसका चलती है। और वैसे भी हम काफी दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं, हमारे जाने का वक्त भी आ चुका है, किसी न किसी दिन तो हमें जाना ही था, और बिटिया ज्यादा दिन हम इस तरीके से अपनी गोरी के घर नहीं रह सकते। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान चलकर नानी माँ के पास आया और उनकी आंखों में देखकर बोला, नानी माँ ये आपका भी घर है, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आस्था का घर है इसलिए आप यहाँ नहीं रुक रही हैं, तो मैं ये पूरा घर आज ही आपके नाम कर देता हूँ, उसके बाद तो आप रुकेंगी ना। जैसे ही अरमान ने बेहद शांत लेकिन कड़े और ऑर्डर देने वाले लहजे में ये कहा, वहां मौजूद सभी लोग अचानक हैरानी से अपनी आंखें फैलाकर अरमान की ओर देखने लगे थे और फिर अचानक सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। आखिर अरमान तो अरमान था, भले ही इस वक्त अरमान अपनी पत्नी और बेटे के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन उसकी डेविल वाली टोन जरा सी भी कम नहीं हुई थी। आखिर क्या रंग लाएगी अरमान की डेविल टोन, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर तेरे इश्क में।